ओम शांति। अभी जो परिचय बहन ने दिया वो किसका परिचय था? जब भी किसी का भी परिचय देते हैं या फिर अपना परिचय दूसरों को देते हैं तो यही तो बातें बताते हैं, नाम कहाँ से आए हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं, ये सभी बातें अपने परिचय में दिया जाता है। तो या क्या ये संपूर्ण परिचय हो गया? संपूर्ण परिचय हुआ? नहीं। क्या छूट गया है? क्या छूटा है? ये जो परिचय दिया वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ ऐसी शक्ति है जिसको हम रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई, उस आइडेंटिफिकेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हैं उस शक्ति के साथ या उस चीज के साथ? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है ना। जो दिखाई दे रहा है उन्हीं चीजों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसी को हम वर्णन करते हैं और उसी के लिए हम मेहनत भी करते हैं, है ना। लेकिन उससे उसको चलाने वाली, जैसे अगर ये शरीर है, शरीर को चलाने वाली कौन सी चीज है? वो स्पिरिट है, शक्ति है, ड्राइविंग फोर्स है, आत्मा कहे, रूह कहे। क्योंकि अगर कोई शरीर छोड़ता है या मृत्यु को पाते हैं तो भले हम कितने भी उस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं, वो शरीर इंटैक्ट है, वहां लिटाया गया है, बहुत ही मतलब पूरी तरह शरीर पे कोई खरोच नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम कहते हैं ये व्यक्ति हमसे बिछड़ गए, चले गए, हमसे दूर हो गए। क्या चीज है जो उस वो व्यक्ति दिखाए, शरीर दिखाई देने पर भी हम अफसोस जताते हैं या दुखी होते हैं, ये व्यक्ति हमसे दूर हो गए? जिनको हम प्यार करते थे वो क्या है फिर? शरीर है या शरीर में रहने वाली वो चैतन्य शक्ति है, है ना? वो शरीर में रहने वाली चैतन्य शक्ति को हम प्यार करते थे, लेकिन शरीर भले कितना भी वैल्यूबल है, कितना भी हम प्यार करते हैं, 3 दिन भी घर में नहीं रखेंगे, अंतिम संस्कार किया जाता है। शरीर वैल्यूबल है, बहुत सुंदर रचना है इस प्रकृति का, लेकिन शरीर की वैल्यू कब बढ़ता है? शरीर की वैल्यू कब बढ़ता है? जब इसमें प्राण है या चैतन्य शक्ति है। तो इसीलिए अपने आप को जब आइडेंटिफाई गलत रीति से कर रहे हैं तो पूरा जीवन उस गलती पर आधारित हो जाता है। तो अपने जो विचार है, अपने बिलीफ सिस्टम है, अपने फीलिंग्स है, तो सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो महत्वपूर्ण है, उसको वी हैव टू सेट इट राइट, है ना। तो इसीलिए जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नाम से, नेशनैलिटी से, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, जेंडर, रिलीजन, समाज में रिकॉग्निशन पाने के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत है, लेकिन यही हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। तो हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है जो इन शरीर को भी चलाने वाली, इस शरीर को, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ये भी मैं नहीं हूं, ये मेरा है। इसलिए कहते ना, जब भी हम कहते ये मेरा हाथ है, ये मेरे आंख है, मेरे कान है, ये नहीं कहते हैं मैं आंख हूं, मैं हाथ हूं, मैं टांग हूं, ये कभी नहीं कहते हैं। ये मेरे हैं, मेरे जब हम कह रहे हैं तो मैं कौन हूं फिर, है ना। तो परोक्ष या अपरोक्ष, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हमें ये पता है ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रही हूं। लेकिन उसको जो रूटीन में अपने आप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आई एम ए कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है आत्मा, जिनको इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं देख सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। कहीं चीजें संसार में है जो हम लैब में प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है। जैसे हम जो भी फील कर रहे हैं उसको लैब में आप मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ही नहीं है। थॉट्स क्रिएट होते हैं लेकिन उसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं है। तो ऐसे ही जब हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं डेड बॉडी और ह्यूमन बीइंग के अंदर बीच में क्या अंतर है, डेड बॉडी में जो प्राण नहीं है वो ह्यूमन बीइंग में वो प्राण है, तो यही तो अंतर है। तो इसीलिए वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स, राइट। ह्यूमन बीइंग्स माने ह्यूमन इज द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, और बीइंग माने वो चैतन्य शक्ति आत्मा। केवल हम ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। तो वो दोनों इकट्ठा है शरीर में, तब जाकर के हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, नहीं तो डेड बॉडी है, है ना। तो इसीलिए आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, एटर्नल इमोर्टल है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है। वो शक्ति है ना, वो एनर्जी है, तो इसीलिए उसका कोई मृत्यु नहीं है, जो आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता या फिर हवा उड़ा नहीं सकता। तो ऐसे अनादि अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। दो बातें हो गई ना, आत्मा है और शरीर है, ये दो बातें, दो चीजें हो गई। तो हमारा रिलेशनशिप इस शरीर के साथ ऐसा है कि जैसे सीप में मोती है, सीप का वैल्यू है, शेल का वैल्यू है, लेकिन मोती नहीं है तो शेल का कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा इस शरीर रूपी सीप में आत्मा मोती है। तो शरीर कार है और आत्मा ड्राइवर है। कार भले कितने भी करोड़ों रुपयों का क्यों ना हो, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सुंदर है, बहुत फास्ट चलती है गाड़ी, लेकिन उसकी वैल्यू कब आएगा? जब वो रोड पर चलाते हैं, ड्राइवर है, तब उसकी वैल्यू है। केवल शोरूम में या गैराज में रख करके वो गाड़ी रखेंगे तो वो कोई वैल्यू नहीं है। जब चलती है गाड़ी तब उसकी वैल्यू है। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है आत्मा। इस शरीर रूपी मकान का ओनर है आत्मा, है ना। ये मालिक है आत्मा इस शरीर का। तो इसीलिए जो भी यहां मेडिटेशन सिखाया जाता है इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग क्यों? अपने ही इस योग के द्वारा हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, मास्टरी पाते हैं। अगर मैं अपने आप को शरीर समझती हूं तो कर्मेंद्रियों के वशीभूत, उसके प्रभाव में मैं आ जाती हूं, तो कंट्रोल नहीं रहेगा। जब मैं अपने आप को आत्मा समझ करके इस शरीर को मैं अपना मकान या अपना एरिया समझती हूँ, अपना कॉस्ट्यूम समझती हूँ, तो उसको पूरा मैं कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मैं मास्टर हूँ ना। तो फिर मेरे सब कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, जो मैं देखना चाहूँ वही देखूँ, जो सुनना चाहूँ जो बोलना चाहूँ, तो वो पूरी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रह सकती हैं। आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है, इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो इसलिए कहते हैं वो अर्थी, उस शरीर को अर्थी कहते हैं। अर्थी क्यों? जो रथ जिसमें रति नहीं है वो अरति, जो रथ रथ रति के बिना रथ है तो अरति कहा। तो ये मेरा किंगडम है, मैं इस किंगडम का राजा हूं या फिर किंग हूं। ये शरीर मेरा मोबाइल है और मैं आत्मा सिम हूं, मैं आत्मा प्रोग्रामर हूं और ये शरीर मेरा रोबोट है। तो मना कंट्रोलर है, मैं मालिक हूं, मैं कंट्रोल कर सकती हूं, मैं मास्टर हूं। तो इसीलिए इन पांचों ही कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और दूसरी बात यह है कि आत्मा को कहा जाता है वो सतोगुणी है। वैसे में जब हमें कुछ नाराज, हमारे अंदर कोई इरिटेशन होता है या नाराजगी होता है या क्रोध होता है, तो अक्सर करके यह बोलने में आता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। तो यहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा ओरिजिनली पॉजिटिव या नेगेटिव है, ओरिजिनली पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो नेगेटिविटी कहां से आया? नेगेटिविटी कहां से आया? माइंड से। कहां से आया? ओरिजिनली आत्मा पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी कहां से आया? सर्कमस्टेंसेस। नाउ वी आर ब्लेमिंग द सर्कमस्टेंसेस। कॉन्शियंस, मन से। जैसे सुबह उठ करके नहा धो करके अगर मैं सफेद कपड़ा पहन, ये ड्रेस पहन करके मैं मार्केट में निकलती हूँ, शहर में मार्केट खरीदारी करना है, ये सब कुछ करते हुए पसीना धूप पोल्यूशन सब चीजों से गुजरते हुए मार्केट से शाम को आती हूँ। जब शाम को आती हूँ तो क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस कपड़े का? कुछ ना कुछ स्पॉट्स लगे होंगे, कुछ ना कुछ गंदगी लगी हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसे डर्ट लगा हुआ होगा। तो उस गंदगी को देख करके अगर ये मैं सोचूं कि ये ना सुबह ऐसे ही था, इसका ओरिजिनली ये कपड़ा ओरिजिनली इस स्पॉट्स के साथ है, अगर ये मान लो तो क्या होगा? गलत है। लेकिन फिर आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? मैं उसको धोने की मेहनत नहीं करूंगी, एक्सेप्ट कर लिया ये स्पॉट्स ऐसे ही है तो फिर मैं उसको धोने की मेहनत नहीं करूंगी। अगर मुझे पता है सुबह जब मैं पहनी थी ये स्पॉट नहीं था लेकिन अभी वो स्पॉट आ गया है, तो ओरिजिनली ये स्पॉट नहीं है, ओरिजिनली ये शुद्ध है ना, और ओरिजिनली इसका कलर व्हाइट है, तो इसलिए फिर मैं मेहनत करूंगी उसको धोने की, फिर इससे ओरिजिनल कलर में लाने की मेहनत करती हूं। ऐसे ही अगर मुझे आत्मा के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूं कि मैं हुई ऐसे, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, तो क्या होगा? तो हम मेहनत नहीं करेंगे उन नेगेटिव संस्कारों को मिटाने की। जब मुझे पता है कि मैं ओरिजिनली मेरा संस्कार ऐसा नहीं है, तो फिर मैं मेहनत करके वो मेरा संस्कार, वो शुद्ध संस्कार के तरफ मैं ले जाऊंगी। जैसे अगर मेरा परवरिश इतने रॉयल रूप में अगर हुआ है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है, अगर मेरा बिहेवियर कहीं बिगड़ गया है, बिहेवियर बिगड़ गया है तो फिर एहसास होगा ना, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे एहसास दिलाएंगे तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, तो ये नहीं कर सकते। तो फिर वो जो डिफरेंस पता है, तो फिर मैं ओरिजिनल के तरफ मैं अपने आप को ले जाने की मेहनत करती हूं। ऐसे ही ओरिजिनली जब मैं आत्मा पॉजिटिव हूं, और ये फैक्ट भी है, वो कैसे हम सिद्ध करेंगे, ये फैक्ट है मैं आत्मा ओरिजिनली पॉजिटिव हूं। जो भी हमारी अपनी चीज होती है ना, उससे बहुत प्यार होता है, अच्छा लगने लगता है। जो अपनी चीजें हैं, अपना कंफर्ट, अपना कमरा, अपनी जो आदतें हैं, तो अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो है वो अपनी चीज अच्छी लगती है ना। ऐसे ही जब हम ये कह रहे हैं कि आत्मा ओरिजिनली प्योर है, ओरिजिनली शांत है, पीस इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल, तो फिर क्या अशांति अच्छी लगती है किसी को? इस हॉल में ऐसे कोई है जो ये कहे मुझे अशांति बहुत अच्छी लगती है, जीवन में अशांत हो, अशांति अच्छी लगती है? नेवर। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये नेगेटिव चीजें हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी ना कभी संस्कार के वशीभूत होकर के हम ऐसे बिहेव करना शुरू करते हैं, लेकिन बिहेव करने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता है। और वो ऐसे एक दूसरा व्यक्ति इन नेगेटिविटी के आधार से वो मेरे साथ बिहेव करे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई नफरत से, क्रोध से बात करे आपसे, अच्छा लगेगा? नहीं लगता है। तो इसका मतलब है ये अपनी चीज नहीं है, अपने गुण नहीं है। अपने गुण तो शुद्ध, पवित्र और ये सात गुण हैं। इसीलिए सात गुण जो पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्यार, स्नेह, तो ये सातों ही गुण आत्मा के ओरिजिनल शुद्ध गुण हैं। लेकिन जैसे ही इन मात्रा, इस परसेंटेज में जब कम हो जाता है आत्मा में, नेगेटिविटी अनुभव करना हम शुरू कर देते हैं। जैसे नेगेटिविटी कोई ऐसे, उसका अस्तित्व नहीं है, एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज नेगेटिविटी, ये समझने की बात है। एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी में अपना कुछ ताकत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहां इस हॉल में अगर पूरा अंधेरा है, लाइट सब कुछ ऑफ है, खिड़कियां दरवाजे बंद है, यह हॉल पूरा अंधेरा है, तो लाइट कहां से आएगा? कैसे हम ले आ सकते हैं लाइट इसमें? प्रकाश कैसे लाएंगे? खिड़कियां दरवाजे खोलने से, सनलाइट अंदर आने से, या फिर कोई दिया, कैंडल, टॉर्च, कोई भी प्रकाश या लाइट ऑन करे, तो फिर इस हॉल में लाइट आएगा, है ना। और अंधेरे को हम ये नहीं कहेंगे अंधेरा भाग जाओ तो फिर लाइट आए, नहीं, है ना। तो यहां व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की परिभाषा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का ना होना अंधेरा है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, अ सुनाई नहीं दे रहे. लाइट इज अ रे ऑफ ब्राइटनेस. ओके, कैन वी से इट्स अ एब्सेंस ऑफ डार्कनेस? कैन वी से, कह सकते हैं लाइट को एब्सेंस ऑफ डार्कनेस? कह सकते हैं, कह तो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में वो तो नहीं बोला जा सकता है, है ना? क्यों? डार्कनेस के लिए तो हम कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट के लिए हम ये नहीं मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स एब्सेंस ऑफ डार्कनेस. क्यों? क्योंकि डार्कनेस का कोई सोर्स नहीं है. यहां से मुझे अंधेरा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है. लाइट का सोर्स है सन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कैंडल है, लैंप है. तो ये है लाइट का सोर्स. डार्कनेस का कोई सोर्स नहीं है. सनसेट हो जाता है तो फिर अंधेरा है, सनराइज के साथ फिर रोशनी है. तो लाइट एनर्जी है, लेकिन डार्कनेस एब्सेंस ऑफ एनर्जी है. ऐसे ही पॉजिटिविटी एनर्जी है, नेगेटिविटी एब्सेंस ऑफ एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी है. अगर मुझे आत्मा के अंदर कोई नेगेटिव संस्कार दिखाई दे रहा है, उसको निकालने की मेहनत मुझे नहीं करना है. अगर मुझे अंदर, मेरे अंदर क्रोध है, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, तो मुझे उसको दूर करने की मेहनत नहीं करना है, लेकिन उसके ऑपोजिट जो गुण है उसको अनुभव करने की मेहनत मुझे करना है. क्रोध का ऑपोजिट क्या है? पीस है. क्रोध का ऑपोजिट पीस है. तो शांति आत्मा का ओरिजिनल गुण है, तो उसकी मात्रा कम होने के कारण से क्रोध बढ़ गया है ना? तो इसलिए जितना हम मेडिटेशन में शांति की अनुभूति करते जाएंगे, आत्मा में शांति की परसेंटेज बढ़ा देंगे, उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, तो फिर धीरे धीरे क्रोध कम होता जाएगा, है ना? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अगर मेरे अंदर ज्यादा है, तो इसका मतलब है आत्मा में स्नेह की शक्ति की कमी है. जितना मैं स्नेह की शक्ति की परसेंटेज बढ़ाऊंगी, तो वैसे वो नेगेटिविटी कम होता जाएगा, है ना? जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है, तो आत्मा संपूर्णता की अनुभव वो कर सकती है, और मैं हमेशा पॉजिटिव रह सकती हूँ. और ये जो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे अपने आत्मा के कर्मेंद्रियों को यूज करने की जरूरत है. जैसे शरीर के अपने कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये सब शरीर के कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे आत्मा के भी कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. अलग अलग कर्म है इन तीनों ही कर्मेंद्रियों के. मन के द्वारा मैं आत्मा विचारों को क्रिएट करती हूँ, और बुद्धि के द्वारा मैं निर्णय करती हूँ, और जो भी मेरे डिसीशंस होते हैं वो कर्म में परिवर्तन हो जाता है, और कर्म फिर संस्कार, रिपीटेड कर्म, मेरा हैबिट, मेरे संस्कार बन जाते हैं, है ना? तो मन क्या चीज है? जैसे इसमें दिखा रहे हैं, मन में वेव्स हैं, है ना? जैसे सागर में एक के पीछे एक वेव्स आते जाते हैं, कभी भी सागर वेव्स के बिना नहीं होता. कभी हाई टाइड्स होते हैं, कभी लो टाइड्स होते हैं, लेकिन टाइड्स के बिना, वेव्स के बिना नहीं होता सागर. ऐसे ही मन भी एक मन के अंदर भी एक के पीछे एक विचार आते जाते हैं, उसका कोई बना शून्य या नलिफाई हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन का कर्म ही है विचारों को क्रिएट करना। यहां बैठे बैठे पहले सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन में को दूसरे भी विचार एक के बाद एक आ रहे हैं। आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, विचार तो लगातार आ रहे हैं, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड। तो मन के अंदर हम चार प्रकार के विचार क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी थॉट्स। ये चार मेन कैटेगरीज हैं जो हम यूजुअली क्रिएट करते हैं मन के द्वारा। और दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ थॉट्स। ऐसे नहीं कि विचार कहीं से आ रहे हैं, सोच बोलते ना विचार आ गया मेरे को, कहां से आया? विचार आ रहे हैं, भावना आ रही है, तो कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रही है? कहीं ऊपर से, साइड से, कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? थॉट्स आ रहे कहते हैं ना, ये बोलने में बोल लेते हैं हम, ये विचार आ रहा है मेरे को, कहां से आ रहे हैं? अपने भीतर से आ रहे हैं ना, भीतर से आने वाले। तो हम, मैं तो क्रिएटर हूं ना, वो थॉट्स के मैं खुद क्रिएटर हूं, मेरे परमिशन के बिना वो थॉट्स आएंगे भी नहीं ना। थॉट्स हाँ, मन पर प्रभाव होता है, संस्कार मेमोरीज के जरा प्रभाव होता है थॉट्स पर जरूर, है ना, लेकिन मैं क्रिएटर हूं उन थॉट्स के, वो हमें समझना। नहीं तो फिर हम हमेशा ये कहेंगे कि आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, नहीं, मैं रचता हूं। और मुख्यतः ये चार प्रकार के थॉट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। पॉजिटिव थॉट्स क्या है? पॉजिटिव यूजुअली कहने में आता है ना कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। तो पॉजिटिविटी है क्या? पॉजिटिव थॉट्स है क्या? इससे किसी का नुकसान ना हो, भले खुद का नुकसान हो, इससे पॉजिटिव क्या है? जो सबके लिए अच्छा हो। सिंपल रीति से अगर डिफाइन करें, पॉजिटिविटी माना खुद भी सुखी रहे और दूसरों को भी सुख दे, है ना। ऐसे विचार जो है वो पॉजिटिव है, जो वैल्यूज के आधार से, वर्च्यूज के आधार से जो भी हम सोचते हैं या करते हैं, तो वो है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड बहुत कम होता है, और उसके कंपैरिजन में नेगेटिव थॉट्स क्या है? जिससे खुद दुखी हो और दूसरों को भी हम दुख दे, वो है नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, है ना? जब किसी से भी हम बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत हमारे वॉल्यूम लो होता है, बहुत सॉफ्टली, स्वीटली हम बोलेंगे, लेकिन वही क्रोध में अगर जब हम बोलते हैं, भले वो व्यक्ति एक फीट दूरी पर यहां ही खड़ा है, लेकिन हम क्या क्रोध पूरी तरह जोर, बॉइलिंग एंगर जब आ जाता है, बहुत जोर से क्रोध आया है, तो फिर कैसे बोलेंगे हम? चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे, भले वो व्यक्ति यहां है, लेकिन मेरे आवाज ऐसे बहुत दूर तक सुनाई देगा, है ना। और वहां उस समय कंट्रोल करना, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, अपने शब्दों को कंट्रोल करना, अपने हाथों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जो आया उसको उठा करके फेंक दिया, मार दिया। तो इसलिए कई बार जेल्स में जब जाते हैं ना सेवा के लिए, लगते कि एक मिनट के क्रोध में वो मर्डर कर बैठा है ना, तो बाद में अफसोस होगा। कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा अपने बोल पर, अपने हाथों पर, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा। इतना फास्ट होता है नेगेटिव थॉट्स के स्पीड, है ना। तो उसमें जैसे अगर गाड़ी को 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर आवर पे भगा रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई व्यक्ति अगर आए और ब्रेक लगाया तो वहां ब्रेक नहीं लगता, थोड़ा 10 कदम दूरी पर जाकर के वो गाड़ी ब्रेक लगती है। हम कितना भी नेगेटिव थॉट्स में ब्रेक लगाने की कोशिश कर, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हमारे से कर्म के द्वारा हो ही जाता है। इसलिए कोशिश करके हमें नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, जितना हो सके पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव थॉट्स करेंगे, क्रिएट करेंगे, आत्मा की मन की एनर्जी बढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स से आत्मा की एनर्जी कम होता है, ना, ड्रास्टिकली कम होता है नेगेटिव थॉट्स से। और ये वेस्ट क्या है, वेस्ट थॉट्स क्या है, वेस्ट थॉट्स ना नेगेटिविटी जितना खतरनाक है, ना पॉजिटिविटी जितना अच्छा है, बीच में है, जैसे स्लो पॉइजन की तरह है। व्यर्थ सोच जो कोई काम की नहीं है, ऐसे विचार लगातार अपने मन में आते हैं, अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना, अनावश्यक भविष्य के बारे में चिंतित होना, ये कोई काम के नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। यहां बैठे बैठे आप सोच, अगर सोचते हैं कि चलो मैं 8 बजे ये जाकर के करूंगा, ये काम है, वो काम है, कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको 8 बजे तक यहां बैठना है, है ना। जो भी करना है तो 8 बजे के बाद ही जाकर के कर सकते हैं, तो ये वेस्ट थॉट हो गया ना। जो प्रोडक्टिव नहीं है वो है वेस्ट। वेस्ट थॉट स्लो पॉइजन की तरह है, मन को धीरे धीरे खोखला करना शुरू करता है। तो लंबे काल तक अगर मैं वेस्ट थॉट्स क्रिएट करती हूं मन में, वो आदत बन गया है मेरा वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने का, क्या होगा, मन के रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो दिखाई देने लगता है। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मन के रिलेटेड बीमारियां दिखाई देने लगता है, क्योंकि मन की एनर्जी कम होता जा रहा है धीरे धीरे और पता ही नहीं चलता। और नेसेसरी थॉट्स, नेसेसरी आवश्यक विचार, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, कर्म के प्रति जो हमारे थॉट्स है वो है नेसेसरी थॉट्स, जो आवश्यक है, जो भी कर्म रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है, तो वो है नेसेसरी थॉट्स। मुख्यतः ये 4 प्रकार के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। तो अगर अपने आप को देखें, कौन से थॉट्स हम ज्यादा क्रिएट करते हैं दिन भर में, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट या नेसेसरी? रियली नेसेसरी है? थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा और दिखाई देगा, वेस्ट ज्यादा है, उसके बाद तो पहले में फर्स्ट नंबर में क्या है, वेस्ट थॉट्स है, सब ये मानते हैं, राइट, क्योंकि वो थॉट्स लगातार आ रहे हैं ना, हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। अगर हम फोकस कर लेते, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पर वर्क करते समय पूरा मन फोकस रहेगा ना, तो कोई और विचार नहीं आते हैं, उसको डायरेक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में सोचना है ना। जब डायरेक्शन दिया जाता है तो फिर वो मन उसके बारे में सोचना शुरू करता है, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं दिया है तो फिर अपने आप फ्लो हो रहा है, अपने आप क्रिएट हो रहा है, है ना। तो डायरेक्शन जब नहीं, मेजोरिटी टाइम पे हम डायरेक्शन नहीं देते हैं दिन भर में, है ना, तो इसलिए फ्री फ्लो हो रहा है, वेस्ट थॉट ज्यादा है, है ना। और नेक्स्ट में, सेकंड नंबर में नेगेटिव थॉट्स, क्यों 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 नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि वो बहुत सहज है दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना, ये आदत बन गया, संस्कार बन गया है नेगेटिव। जैसे सफेद कपड़ा है लेकिन एक बड़ा स्पॉट है यहां, ब्लैक स्पॉट, तो ध्यान कहां जाएगा? ब्लैक स्पॉट पर जाएगा। इतना 95-98% जो ठीक है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, 2% 1% जो खराब है उस पर ध्यान जाएगा। आदत है, संस्कार है, तो इसीलिए नेगेटिविटी को सोचने, तो इसलिए कोशिश करके जितना हम अच्छाई को देखना शुरू करते हैं, पॉजिटिविटी के तरफ हमारे एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करने की विधि क्या है, कई बार कहते हैं ना मन बहुत मुश्किल है, घोड़ा है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन घोड़ा नहीं है, मन एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं बच्चे को कंट्रोल? 6 मास का बच्चा, 1 साल का बच्चा है तो कैसे कंट्रोल करते हैं? उसको दिशा देते हैं, उसको मतलब प्यार से उसको समझाते हैं। ऐसे नहीं कि फोर्स फोर्स को ये नहीं करना है, वो नहीं करना। अगर वो कहेंगे ना नहीं करो, वही करेगा वो, है ना। क्या करना है वो बताते हैं। जैसे अगर आपको कहे अगले 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड्स में आप बिल्कुल बंदर को याद नहीं करना, क्या याद आया? क्या याद आया? बंदर ही याद आया। इंस्ट्रक्शन क्या था? बंदर याद नहीं करना, है ना। जो ना बोलते हैं ना उसी तरफ मन जाता है। इसीलिए क्या करना है उसको उसके बारे में बताएंगे तो उस दिशा पर जाना शुरू करते हैं। तो हम अभी तक क्या कर रहे, क्या नहीं करना है वो बता रहे थे मन को, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। क्या करना है वो बताएंगे तो उस दिशा में जाना शुरू करता है और कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है, है ना। तो मन घोड़ा नहीं है, एक छोटा बच्चा है। और नेक्स्ट अंग है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, डिसीशंस लेते हैं, एनालाइज करते हैं, चॉइसेस हमारे सामने जो होता है चूज करते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, डिसर्नमेंट, परखने की शक्ति बुद्धि के अंदर होता है। इट्स अ डिसीशन मेकर, इंटेलेक्ट इज अ डिसीशन मेकर। बहुत सारे विचार आ रहे होंगे लेकिन एक डिसीशन ले लिया तो वो कर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अभी 12th स्टैंडर्ड में है, 12th में उसका मतलब आगे प्रोफेशन क्या लेना है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये लेना है, वो लेना, वो लेना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे विचार चल रहे, ये करना है, ये करना है, वो करिए, करने से अच्छा होगा, ये होगा, तो बहुत सारे बातें मन में चल रहे, ये मन क्रिएट कर रहा है ये सारे थॉट्स। और बुद्धि एनालाइज करके डिसीशन ले लिया, मेरे जो लाइकिंग्स है, जो भी है, वो एनालाइज करके एक निर्णय ले लिया कि मुझे ये करना है। डिसीशन लेते ही क्या होता है, ये सारे विचार डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो जो डिसीशन लिया फिर कर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप यहां आ रहे थे, आने से पहले बहुत विचार आ रहे थे आपके अंदर कि जाना है नहीं जाना है, कैसे हम सब कुछ मैनेज करेंगे, तो बहुत सारे विचार आ रहे थे, लेकिन फिर आपने जब डिसाइड किया जाना है माउंट आबू, फिर सारे और थॉट्स डिसॉल्व हो गए और फिर कर्म में वो परिवर्तन हुआ। तो बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है डिसीशंस अपने लाइफ में। बुद्धि एक फिल्टर की तरह है, चाय जो छनते हैं, फिल्टर की तरह है, जो विचार आ रहे हैं बहुत सारे विचार, एक विचार डिसाइड किया तो वो फिर वो क्रॉस होकर के फिर वो कर्म में परिवर्तन हुआ। अगर ये फिल्टर, बुद्धि रूपी फिल्टर जो है, अगर इसमें ब्लॉकेज है तो क्या होगा? बुद्धि एकदम जम गया है, मतलब सोच नहीं पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक्ड है बुद्धि, तो क्या होगा? कोई डिसीशन नहीं ले पा रहे पाते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इसलिए कई बार होते हैं कि बुद्धि नहीं चल रहा है, वो तो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूं। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे? क्योंकि बुद्धि ब्लॉक्ड है, बुद्धि क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है बुद्धि के अंदर, इसीलिए कोई डिसीजन हम कहीं बार ले नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है, उस फिल्टर में अगर छेद है, होल्स है बहुत बड़े बड़े, क्या होगा? तो जो सोचा, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, जो सोचा वो किया। इसलिए यूजली कहते हैं ना, सोच समझ करके कर्म करो। सोचना मन से, समझना बुद्धि से। अगर सिर्फ सोचा और किया वो गलत हो जाता है ना? समझ करके उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो समझ करके जब हम करते हैं तो फिर वो राइट होगा। तो इसीलिए बुद्धि के फिल्टर साफ सुथरा और फिर होल्स के बिना अगर रखना है तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन के द्वारा मन को क्लीन और बुद्धि को क्लियर रख सकते हैं। बहुत सारे क्लैरिटी जीवन के बारे में ये मिलता है मेडिटेशन के द्वारा। इसीलिए माइंड इज अ हॉर्स एंड इंटेलेक्ट इज अ हॉर्स राइडर। बुद्धि के अंदर वो शक्ति है तो वो मन को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरी बात है संस्कार, जो कर्म, जो हैबिट्स, ये सब कुछ जो होता है वो है हमारे संस्कार। हर आत्मा के अंदर संस्कार होता है, राइट? अभी एक दिन का बच्चा है, अभी अभी जन्मा है, कुछ घंटों पहले जन्मा है वो बच्चा, एक दिन भी नहीं हुआ है, उसने कुछ कर्म ही नहीं किया है, अभी अभी आंख खोल रहा है, रो रहा है, तो वो उस शरीर के अंदर आत्मा भी तो है, राइट? वो जो आत्मा आई है उसके अंदर क्या संस्कार है? कोई संस्कार नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार है, क्योंकि आत्मा अनादि अविनाशी है, एक जन्म छोड़ करके दूसरे जन्म में वो जाती है, राइट? तो वो जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, जो आत्मा उसके अंदर उस शरीर के अंदर है, पूर्व जन्म के संस्कार लेके वो बच्चा पैदा हुआ है। इसीलिए कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई फुटपाथ पे, कोई जन्मते ही अनाथ बन जाता है। अलग अलग सिचुएशन में बच्चे पैदा क्यों होते हैं? ऐसा नहीं कि भगवान पार्शियल है, नहीं, ये अपने ही कर्मों के आधार से, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार से वो आत्माएं, वो बच्चे जन्म लेती है अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग घर में, अलग अलग वातावरण में, है ना? वो आत्मा पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के जन्म लेती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे 2 मास का 3 मास का 1 साल का 2 साल का, तो उसके अंदर कुछ और संस्कार एडअप होना शुरू होता है। कौन से हैं? मात पिता के संस्कार, जीन्स के द्वारा या परवरिश के द्वारा जो एडअप होता जाता है उस बच्चे के अंदर, वो है पेरेंटल संस्कार, है ना? और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, समाज में अलग अलग लोगों के साथ मिलना शुरू होता है, और तीसरे प्रकार के संस्कार एडअप होता है वो है कंपनी, जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता कॉन्वर्सेशन कर रहा है या इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसके संस्कार जो वो ग्रास्प कर रहा है, जो ले रहा है, वो जो समझ रहा है, तो वो ले रहा है, तो वो है तीसरे प्रकार के संस्कार एडप होता जाता है। और चौथे प्रकार के संस्कार है जो हम अपने दृढ़ संकल्प से परिवर्तन कर सकते। ऐसा नहीं कि हम निसाय नहीं है, हम आत्मा कमजोर नहीं है कि जो भी डालते जाओ मैं लेती जाऊं, ऐसी बात नहीं। हम चूज करते हैं क्या मुझे लेना है क्या मुझे लेना नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो चूजिंग पावर, डिसीशन पावर बढ़ता है, वो चूज करना शुरू करता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो अभी वर्तमान समय भले मेरा पास्ट बर्थ के कर्म अच्छे नहीं थे, मान लीजिए अच्छे कर्म नहीं थे तो बुरे अच्छे संस्कार नहीं लेके आए, पेरेंटल संस्कार नहीं अच्छे मिले, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है वो रियलाइज करते हुए अगर मैं अपने कर्मों को परिवर्तन करना शुरू करूं तो वो जैसे रिकॉर्ड पर ओवरराइटिंग होना शुरू होता है। जब ओवरराइटिंग होना शुरू होता है तो नेगेटिव जो संस्कार पूर्व जन्म के ये वो मिटता जाएगा धीरे धीरे, और फिर पांचवे प्रकार के जो एटर्नल ओरिजिनल अनादि अविनाशी संस्कार आत्मा के वो है शुद्ध सतोगुणी संपूर्ण पवित्र। तो ऐसे संस्कार तक मैं आत्मा अपने आप को ले जा सकती हूँ। तो हमारे हाथ में है खुद को परिवर्तन करने की। हम ब्लेम नहीं कर सकते दूसरों, इसके कारण से मेरे अंदर क्रोध आया, इसके कारण से मेरे जीवन में दुख आया, ये हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स विद अ रीजन, नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है, मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। तो अगर मैं अभी अपने आप को परिवर्तन करते हुए अपने विचारों को भावनाओं को कर्मों को शुद्ध करती जाऊंगी पॉजिटिव करती जाऊंगी तो मैं अपने संस्कारों को एकदम 100% शुद्ध बना सकती हूँ। ये है राजयोग का लक्ष्य, मेडिटेशन का लक्ष्य। मेडिटेशन का लक्ष्य कोई केवल शांति की अनुभूति नहीं, आधा घंटा मेडिटेशन में बैठ गए तो फिर पीस अनुभव हुआ, वो वही रिजल्ट नहीं है। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन अपने संस्कारों को नेगेटिविटी से मुक्त करके एकदम शुद्ध अनादि अविनाशी संस्कार बनाने का, ताकि वो नेचुरल हो जाए, पीस नेचुरल हो जाए, प्यार नेचुरल हो जाए, ज्ञान, ये सातों ही गुण मुझ आत्मा का नेचुरल मेरे कर्मों में दिखाई दे। ये है अल्टीमेट लक्ष्य मेडिटेशन का। तो इसीलिए मेडिटेशन सोल कॉन्शियस, मेडिटेशन करने के लिए फिर सोल कॉन्शियसनेस जो अभी हमने आज के बार अभी जो इस सेशन में सुना हमने, सोल कॉन्शियसनेस या आत्मिक स्मृति, अपने आप को आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस रीति से हम आइडेंटिफाई करें, मैं आत्मा कुक कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा काम कर रही हूँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं मैं आत्मा वो कर्म कर रही हूँ। नहीं तो ये नेचुरल स्मृति है ना, अपने आप को जैसे बचपन से जो मुझे आइडेंटिफाई किया मैं लड़की हूँ, मेरा नाम ये है, वो नेचुरल हो गया है। अगर पीछे से कोई मेरा नाम चिल्लाए तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान जाएगा वहां क्यों बुला रहे, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है, क्योंकि मैं अपने आप को उस नाम से आइडेंटिफाई करती हूँ। दूसरा नाम चिल्लाए तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा, अपना नाम जो कोई चिल्लाएगा तो मेरा ध्यान जाएगा, है ना। तो वो क्योंकि मैं अपने आप को उस नाम से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, ऐसे वो नेचुरल हो गया है मेरा, है ना। ऐसे ही आत्मा हूं ये नेचुरल हो जाए, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा समझने से अपने अंदर खूब सारा पॉजिटिविटी आएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस से कंपैरिजन होता है, ये खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, ये है, वो है, इस धर्म को बिलोंग करते हैं, ये देश को बिलोंग करते हैं, सारे जो बातें हैं, कंपैरिजन्स हैं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ आएगा। और सोल कॉन्शियसनेस से एक्सेप्टेंस, हम सभी धरती के सितारे हैं। आकाश में जब सितारों को देखते हैं, ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता, केवल रोशनी, जो प्रकाश में अंतर दिखाई देता, यहां से जब देखते हैं, टेलीस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारी बातें दिखाई देता है, लेकिन यहां से देखते हैं आकाश को तो केवल रोशनी, पॉइंट ऑफ लाइट्स दिखाई देते हैं, है ना, कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही यहां हम सभी धरती के सितारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं, और वहां कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक्सेप्टेंस आएगा, ये अपने हैं, है ना। और बॉडी कॉन्शियसनेस से डिविजन्स ज्यादा हो जाता है, और सोल कॉन्शियसनेस से यूनाइटेड यूनिटी बढ़ता है, और बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने ही कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस से ये स्मृति रहेगा, मैं आत्मा मालिक हूं, तो मैं अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकती हूं। और बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा जब होता है ना, मृत्यु से बहुत ज्यादा डर लगता है, है ना। तो जब हमें पता है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, जो भी मृत्यु है ये शरीर का है, मृत्यु क्या है, जस्ट चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ द सोल, सोल अपना एड्रेस बदल रहा है, है ना, तो वो है मृत्यु, तो मृत्यु से डर नहीं लगता सोल कॉन्शियसनेस में। तो इसीलिए मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, लेकिन अलग अलग रोल्स मेरा, एक व्यक्ति अलग अलग रोल निभाते हैं, वो पति भी है तो फादर भी है तो बेटा भी है, तो अलग अलग रोल निभाते हैं अलग अलग लोगों के साथ, है ना। जब मैं आत्मा समझ करके ये रोल निभाती हूं तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगा खोने की, लेकिन मैं अपने आप को इतने गहराई से उन चीजों के साथ आइडेंटिफाई करती हूं। चाहे मान लीजिए मैं अगर कोई कंपनी की सीईओ हूं, अगर एक तो समय आएगा मुझे रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा, राइट, तो रिटायरमेंट समय जब आएगा तो रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतने गहराई से उस पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई कर रही हूं, मैं सीईओ हूं, मैं सीईओ हूं, मैं सीईओ हूं, तो फिर जब वो पोजीशन मेरे से जाता है तो ये खोखलापन, एक बहुत ही ब्लैंक मैं महसूस, अनवर्थीनेस, मैं कोई लायक नहीं हूं, वो महसूस करना शुरू करती हूं, क्योंकि इतने गहराई से उस पोजीशन के साथ मैं आइडेंटिफाई कर, ये चला गया मैं तो मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, वो केवल एक रोल था, एक पार्ट था मेरे लाइफ का। तो जब ऐसे आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रेसेस नहीं आएगा, क्योंकि मैं उससे भी बढ़कर हूं ना, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा तो बहुत कुछ हूं, ये केवल एक पार्ट था मेरा, है ना। ऐसे जब रिलेशनशिप के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं ना, जब वो रिलेटिव मेरे से दूर हो जाते हैं तो फिर यहां बहुत ही खोखला महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं, तो फिर सुसाइड तक फिर लोग चले जाते हैं, नहीं, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि उस रिलेशनशिप के साथ इतने गहराई से आइडेंटिफाई किया है अपने आप को, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, नहीं, केवल मेरा एक रोल था, एक पार्ट था उसके साथ बस। तो ये बार बार मैं आत्मा हूं, ये पार्ट बजा रही हूं, ये केवल मेरा पार्ट है, ये अगर समझ करके चलते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव बातों से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। इसीलिए जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं, व्हेन वी आर इन दैट अवेयरनेस, मैं ये समझती हूं कि मैं आत्मा बहुत यूनिक हूं, वहां कंपैरिजन नहीं आएगा। अंगूठा जो है ये इसका जो बहुत अलग अलग है ना हर एक का, तो हर आत्मा यूनिक है। तो मैं आत्मा यूनिक हूं, तो खुशी कभी नहीं खोएंगे हम। हम आत्माएं सब इक्वल है, वहां डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आत्मा वैल्यूएबल हूं, मूल्यवान हूं, मैं आत्मा मास्टर हूं, क्रिएटर हूं, आई एम कनेक्टेड टू माय सेल्फ। कनेक्शन फील होता है, हम दूसरों के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद के साथ कनेक्शन नहीं होता। तो खुद के साथ कनेक्टेड फील करना बहुत जरूरी है, और कैपेबल हूं, पावरफुल हूं, और आत्मा लाइट है, अनादि अविनाशी है। तो ये जैसे पूरा ही फाउंडेशन अपने जीवन का बदल जाता है जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। तो लास्ट में जब भी आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसमें पूरा परिचय देते हैं। पूरे परिचय में 6-7 बातें होती हैं, तो उसमें उस एक पेपर में पता चलता है कि आपका पूरा बायोडेटा पता चल जाता है। तो ऐसे ही व्हाट इज द बायोडेटा ऑफ द सोल, सोल का परिचय इन 5-6 बातों में आ जाता है। एप्लीकेशन में अपना नाम लिखते हैं, आत्मा, आत्मा का अगर नाम है वो है आत्मा, रूह, स्पिरिट, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग एनर्जी, हम कह सकते हैं आत्मा का नाम। और हम फोटो लगाते हैं अपना, कैसे दिखती हूं, वो एप्लीकेशन में फोटो चिपकाया जाता है। तो आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का रूप, आत्मा कैसे दिखती है, ज्योति बिंदु, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, एक चमकता हुआ सितारा। और माता पिता का नाम लिखते हैं उस एप्लीकेशन में, और माता पिता का नाम फिर कल आपको बताया जाएगा। और आत्मा का एड्रेस, आत्मा का एड्रेस क्या है, परम धाम है। अभी जो यहां है वो कहां है, क्या है, मेरा शरीर, आपका, आप, हाँ, आप आत्मा के एड्रेस क्या है, आप आत्मा के एड्रेस क्या है, दो एड्रेस लिखा जाता है, एक है टेम्पररी एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। ये है हर आत्मा का, केवल मेरा नहीं, आपका भी, आपका भी जो टेम्पररी एड्रेस है यहां है, बॉडी है, और परमानेंट एड्रेस परमधाम, जहां से आए हैं। इसलिए कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, जो हमारा सभी आत्माओं का घर है परमधाम, वो है हमारा परमानेंट एड्रेस। डेट ऑफ बर्थ, आत्मा अनादि अविनाशी है, एटर्नल और इमोर्टल है। आत्मा का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ केवल बॉडी का होता है। क्वालिफिकेशन आत्मा का, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मतलब लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होता है, जो पढ़ाई किया है, जो ग्रेजुएशन किया है, वो क्वालिफिकेशन का कहा जाता है इस दुनिया में। लेकिन आत्मा के क्वालिफिकेशन क्या है, आत्मा के क्वालिफिकेशंस है 7 गुण आत्मा के, क्योंकि उस आधार से ही हम कर्म करते हैं ना, उसके साथ आत्मा के वो ओरिजिनल क्वालिटीज है, 7ों ही गुण आत्मा के वो क्वालिफिकेशंस। और ऑक्यूपेशन क्या है, आपके तो ऑक्यूपेशन साइंस, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, आर्किटेक्ट है, यहां वो हुआ आपके इस लाइफ का। आत्मा के प्रोफेशन क्या है, सेल्फलेस सर्विस, बहुत अच्छी बात है ना। आत्मा का प्रोफेशन है सुख देना, आत्मा का प्रोफेशन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना आत्मा का प्रोफेशन है, खुद करके दूसरों को राह दिखाना, इंस्पायर करना। ऐसा नहीं है ना, खुद को सब कुछ चाहिए, समाज को हम दे नहीं, ऐसा नहीं है। हम बदल के समाज को इंस्पायर करना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाना, है ना। स्वयं भी सुखी अनुभव करना, दूसरों को भी सुख का रास्ता बताना, है ना। ये है आत्मा का प्रोफेशन, ये है संपूर्ण परिचय आत्मा का। कोई क्वेश्चंस है? उस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है वेस्ट थॉट्स का। वो भी वेस्ट है, तो इसे मैंने कहा कि अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना, अनावश्यक भविष्य के बारे में चिंता करना, पास्ट में ज्यादा। किसी किसी को फ्यूचर को भी लेकर के बहुत चिंता होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। होने से पहले हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, हुआ नहीं है चिंतित होते हैं। कोई भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और कोई पास्ट के बारे में, 10 साल पहले उसने ऐसा किया था, 5 साल पहले उसने ऐसा किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, वो नेगेटिव इमोशंस हम लेकर के चल रहे हैं, तो उसको निकालना है। तो वो पूरा एक सेशन हो है उसका, कैसे हम निकालें एक एक चीज को, क्या है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद के, क्या है वेस्ट थॉट्स पास्ट के। तो वो फिर नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें, तो वही बोला ना कि जैसे एनालॉजी दिया लाइट और डार्कनेस। नेगेटिविटी है तो उसके अपोजिट पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की जरूरत है बस। वो फिर धीरे धीरे, एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा वो, है ना। लगातार अभ्यास करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो धीरे धीरे वो निकल जाएगा। निराकार का मतलब ये नहीं है कि कोई आकार नहीं है। जैसे एटम या मैंने अति सूक्ष्म जैसे पॉइंट होता है, एक पॉइंट है, पॉइंट का तो आकार है ना, पॉइंट तो आकार है ना। ऐसा नहीं कि स्क्वायर ट्रायंगल यही आकार है, पॉइंट भी एक आकार है। तो इसीलिए पॉइंट है, इसीलिए निराकार कह दिया। लेकिन वो प्रकाश भी है, आप कह रहे थे प्रकाश कैसे कहेंगे हम उसको, लाइट कैसे कहेंगे। जैसे अगर व्यक्ति है, व्यक्ति का ओरा होता है, एनर्जी फील कर सकते हैं आप। जितना स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसके सानिध्य में जाते ही, उसके नजदीक जाते ही वो एनर्जी हम फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बढ़ी हुई होती है। जैसे ही आत्मा और शरीर से निकल जाती है तो शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहता, वो हम फील भी कर सकते हैं एनर्जी वाइज। अगर आप थोड़ा सेंसिटिव होंगे एनर्जी के लिए तो फिर समझने लगते हैं पॉजिटिव एनर्जी, आप फील कर सकते हैं कहीं भी एक स्थान पे। मान लीजिए अगर मंदिर में जाते हैं, वहां की एनर्जी लेवल अलग है। कोई भी पूजा के प्लेस में जाते, वर्शिप प्लेस में जाते हैं, तो वहां की एनर्जी अलग है। जेल्स की एनर्जी अलग है, हॉस्पिटल्स की एनर्जी अलग है। वो एनर्जी कहां से क्रिएट हो रहा है, कोई मकान से, ईंटों से, इनसे नहीं आ रहे ना वो एनर्जी, कहां से आ रहा है। वहां के लोग जैसे सोचेंगे वही वाइब्रेशन है। मंदिर में जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हायर पावर के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, वहां की एनर्जी बड़ी हुई होती है। हॉस्पिटल में सफरिंग्स ज्यादा है, वो हैवी एनर्जी है। और जेल्स में जो क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल्स जहां होते हैं, वहां की एनर्जी और ही बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही हैवी होता है। तो ऐसे वो एनर्जी हम, उससे सिद्ध होता है कि एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। जी 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 जी, उसकी क्वालिटीज अलग है। जी जी टॉपिक में मैं कवर करती हूँ क्योंकि फिर कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा। हम अभी समझते ह्यूमन आत्माओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्थूल आकार नहीं है, कहने का तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं, नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए नेगेटिविटी को अपनाए वो कभी ठीक नहीं होगा। नहीं करना है, फर्मली करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। डिसिप्लिन अलग है, गुस्सा अलग है। डिसिप्लिन इज पॉजिटिव, गुस्सा इज नेगेटिव। तो फर्मली तो बोलना है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ फर्मली बोलना है कि आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। गुस्सा करने से वो परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रेम से, हाँ प्रेम से करके देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा फर्मली तो बोलना पड़ेगा, लेकिन उनको थोड़ा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें अपनानी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा आफ्टर कॉन्सिक्वेंस, वो कुछ ऐसा बताना पड़ेगा ताकि वो इमोशनली जो कनेक्टेड है वो लाइफ, उनके मन, तो उनके साथ अगर ऐसे करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो फिर हाँ गुस्सा करेंगे तो नहीं। हमेशा आग आग से नहीं बुझती। डिफरेंस तो दैट इज अ ब्यूटी। ओके, क्वेश्चन है, नेगेटिव अगर एनर्जी है घर में कहीं भी जगह पर, कैसे उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में परिवर्तन करें, ऐसा है ना? तो ये है, सबसे उसके लिए सबसे पहले हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बिलीफ ये है कि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी। डू यू बिलीव इन दिस? पॉजिटिविटी 1000 गुना शक्तिशाली है नेगेटिविटी से, प्रोवाइडेड कि मैं लगातार पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करूं, तो वो नेगेटिविटी कहीं का नहीं रहेगा। नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं प्रोवाइडेड मैं लगातार पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करूं। कई बार क्या होता है, सुबह उठते हैं बहुत एनर्जी अच्छी है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा समझ सोच रहे हैं हर एक के बारे में। जैसे जैसे हम जैसे दोपहर हो गया, शाम हो गया, तो एनर्जी लेवल कम हुआ तो नेगेटिविटी शुरू हो गया। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन अगर करना है, जैसे ये रॉड को मुझे ब्रेक करना है, लगातार एक जगह पर मुझे हैमर करना होगा तब जाकर के इसको मैं ब्रेक कर सकती हूं। ऐसे लगातार मेरा वाइब्रेशंस अगर पॉजिटिव है कुछ ही दिनों में, वो पूरी तरह उस वातावरण को हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बिलीव होना, विश्वास होना जरूरी है कि पॉजिटिव एनर्जी में इतनी ताकत है। ये संस्कारों का मिलन नहीं हो रहा है, संस्कारों का अनबन होता है कलयुगी दिनों में ज्यादा है, क्योंकि वो मेल मिलाप ज्यादा नहीं होता है। तो जितना आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले खुद को समझने की जरूरत है। जब खुद को समझते हुए मेरी नेगेटिविटी क्या है, मेरे अंदर वीकनेसेस क्या है, तो खुद को समझेंगे मेरे अंदर पॉजिटिविटी क्या है, तो दूसरों को हम समझ सकते हैं। यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ संस्कार क्यों हो रहा है कि एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे। एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे कि पहले तो मैं खुद को समझूं, खुद को ही नहीं समझे तो दूसरों को कहां से समझेंगे। नेगेटिविटी की स्पीड को कैसे कंट्रोल करें? इंस्टेंट तो नहीं हो पाएगा, इंस्टेंट नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही होगा वो। ये मेडिसिन आप कहे कि आपको थर्ड स्टेज कैंसर है, अब एक गोली में पूरा एक ही दिन में खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लंबे काल तक आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, पॉजिटिविटी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रॉनिक डिसीज है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो क्रॉनिक डिसीज है, तो फिर आप लगातार करना पड़ेगा। हाँ जी, जो खड़े हैं एक जी, कर्ज ऑफ और ब्लेसिंग में यह बहुत गहरा है। कर्ज में नेगेटिव है पूरा, ब्लेसिंग में प्लेजिंग पॉजिटिव है। श्राप है, कर्ज मना श्राप है। श्राप मना ऐसा नहीं कि पानी लेकर के मैंने संकल्प किया इसको ऐसा हो जाए, वो तो ऋषि मुनि करते थे, वो अलग बात है। लेकिन अभी दिन भर में हम कहीं ना कहीं कर्ज लगातार कर रहे हैं। अगर किसी ने, मैं ड्राइव कर रही हूं, ड्राइव कर, अचानक कोई स्कूटर वाला आ गया तो गुस्से से कुछ बोल दिया मैंने, वो कर्ज हो जाता है, कर्ज हो जाता है। तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी दोनों सोल को इफेक्ट करता है। सोल और बॉडी तो बहुत ही गहराई से अनकनेक्टेड है ना। सोल का प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, बॉडी का प्रभाव सोल पर पड़ता है, क्योंकि बचपन से लेकर जब से जन्मा है मृत्यु तक, बर्थ से डेथ तक मेरा साथी मेरा शरीर है। कोई जो दूसरे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आत्मा के साथी शरीर है बर्थ से डेथ तक। तो गहरा कनेक्शन है मेरा बॉडी के साथ, तो इसलिए आत्मा का प्रभाव बॉडी का पर, बॉडी का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा, जरूर कह रहा है इसे। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ जी, मैं किसका सुनूं अभी? किसका सुनूं अभी? सब चिपकेंगे आपको, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, सब चिपकेंगे आपको। कर्म से पीछा नहीं छुड़वा सकते आप अपना। पुलिस है वो नेगेटिव नहीं है, वो डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, क्रिमिनल्स को तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्राइम्स बढ़ेंगे। हाँ, वो इंटेंशन मैं ये बता, ओके, वो कवर नहीं किया था। कर्म बाय इटसेल्फ इज नॉट नेगेटिव, द इंटेंशन बिहाइंड द कर्म इज इंपॉर्टेंट। मेरा इंटेंशन क्रिमिनल्स को डांटना पनिशमेंट देना ये है कि वो सुधर जाए, राइट? हम कोई क्रिमिनल्स नहीं चाहते हैं, वो सुधर जाए, इसी के कारण से पनिशमेंट दिया जाता है, इसी के कारण से जेल में भेजा जाता है। लेकिन क्या कौन से वो बाद में क्या होता है वो अलग बात है, वो और बड़े क्रिमिनल होकर के निकलते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर इंटेंशन क्या होता है सुधार करने की। बेचारे जी, नहीं, तेल खत्म होता है तो लाइट खत्म, इस शरीर में खत्म हो जाती है लाइट, वो लाइट फिर दूसरे शरीर में लाइट हो जाता है, दूसरे मतलब बच्चा पैदा होता है तो फिर वहां ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ओनर मालिक तो एक ही होगा, लेकिन भटकती हुई आत्माएं होती हैं, उनका प्रभाव होता है। कोई ना कोई अगर कनेक्शन है मेरा उस आत्मा के साथ तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पॉजिटिव, वही तो बोला ना, पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाए, लाइट को बढ़ाते जाए पॉजिटिविटी, वही बोला ना, पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव खुद के, दूसरों के तो हम बढ़ा नहीं सकते। हम केवल अधिकार, हम केवल अपना ओनर है, अपने मालिक है, खुद दूसरों के मालिक नहीं है। हम केवल इंस्पायर कर सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, मालिक नहीं है दूसरों के। हम इसलिए कोशिश करते हैं दूसरे बदल जाए, हम दूसरों के मालिक नहीं है, दूसरों को सजेशन दे सकते हैं बस, खुद बदले तो जग बदलेगा। चलिए हम मेडिटेशन जी। वो धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। कलयुग की दुनिया है तो नेगेटिविटी बढ़ेगा ना। चलिए दो मिनट अभी हम परमात्मा स्व की अनुभूति में बैठे। चलिए शांति में बैठ जाएं अभी। जो भी विचार चल रहे हैं टॉपिक के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, सिचुएशन लाइफ के सिचुएशंस के बारे में, सर दो मिनट बैठेंगे मेडिटेशन में बैठ जाएं थोड़ी देर। जो भी विचार चल रहे हैं थोड़ा साइड में रख दीजिए और मन को एक कमांड देंगे, जो भी अभी अगले 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, फोकस करें अपने अंदर, आसपास के वातावरण से, आवाजों से मन और बुद्धि को किनारा करते हुए भ्रुकुटी के मध्य में फोकस करें। मन के स्क्रीन पर खुद को देखने की कोशिश करें। ब्रेन के बीचों बीच एक चमकता हुआ अजब सितारा, टाइनी पॉइंट ऑफ कॉन्शियंट लाइट, अनादि अविनाशी आत्मा, अजर अमर चैतन्य शक्ति, वो मैं हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा मालिक हूं। मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर कर्म क्षेत्र पर अपना कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा ब्रेन के बीच में एक अपना पर्सनल कमरा, वहां मैं विराजमान हूं। मैं आत्मा उस पर्सनल कमरे में बैठकर आंखों रूपी खिड़कियों के द्वारा बाहर की दुनिया को देखती हूं। आंखें बंद तो बाहर की दुनिया के साथ मेरा कनेक्शन कट जाता है। दृश्य की जगत के साथ मेरा संबंध कट जाता है। इन आंखों के द्वारा मैं आत्मा इस सुंदर संसार को देखती हूं। मैं आत्मा ब्रेन के बीचों बीच बैठकर कानों के स्पीकर्स के द्वारा शब्द के जगत के साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन जुड़ता है। कान बंद, आवाज के जगत से मेरा कनेक्शन टूट गया। कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूं। मैं आत्मा मुख के द्वारा अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करती हूं। ये मेरा माइक है। गला बंद, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। हाथों से मैं आत्मा कर्म करती हूं। टांगों से आत्मा मैं चलती हूं। ये सारे कर्मेंद्रियां मेरे हैं। मैं इस शरीर के लिए जवाबदार हूं, रेस्पॉन्सिबल हूं और कृतज्ञ भी हूं कि शरीर के बिना मैं आत्मा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं मालिक हूं। मैं जो सोचूं वही कर्म इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर सकती हूं। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा से निरंतर प्रकंपन फैलते हैं। अभी मैं शांति के प्रकंपन फैला रही हूं। ब्रेन के बीचों बीच बैठकर मैं आत्मा शांति की अनुभूति कर रही हूं और शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में फैला रही हूं। सबसे पहले ब्रेन में मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन फैलाते जा रही हूं। धीरे धीरे गला, हार्ट, स्टमक, टांगे और हाथ, सब जगह पर मैं आत्मा शांति की शक्ति फैला रही हूं। धीरे धीरे शांत शीतल होती जा रही हूं, लाइट होती जा रही, हल्की होती जा रही। मैं आत्मा मालिक, दूसरों को भी आत्मा समझ कर देख रही हूं, जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ऐसे हर एक इंसान, हर एक शरीर के अंदर आत्मा मालिक अपना कर्म कर रही है। आत्मा आत्मा के साथ वार्तालाप कर रही है, एनर्जीज एक्सचेंज कर रही है। आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि के द्वारा मैं अपने वातावरण, अपने आसपास के वातावरण को शक्तिशाली, पॉजिटिव और पीसफुल बनाती जा रही हूं।